ओम शांति। हम सभी के चिरपरिचित बाबा के अनन्य रतन, सर्व के स्नेही, यज्ञ के अति समीप, यज्ञ रक्षक, ज्ञान रत्नों से भरपूर आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका जीवन ही प्रेरणा स्रोत है। आप बाल्यकाल से विद्यालय से जुड़े और मम्मा के द्वारा आपने अलौकिक जन्म पाया। आप उत्तर प्रदेश के ही अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने अपने जीवन को बाबा की सेवाओं में समर्पित किया। पत्र पुष्प एवं मुरली में जो प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन जो हम सभी सुनते हैं, वो सारी पॉइंट आप हाईलाइट करके हम सभी के बीच भेजते हैं। आपको दिव्य बुद्धि का वरदान भी शिव बाबा से प्राप्त हुआ है। आप ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी मधुबन की खुशबू आप फैला करके आते हैं। ऐसे योगिक आचरण प्राप्त किए आदरणीय भाई जी से आज हम सुनेंगे सकास देने की विधि और मनसा सेवा। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस शांतिवन में 6-7 मास से बहुत अच्छी तपस्या की लहर चल रही है। शांतिवन जैसा नाम है, वैसा ही ये 4-5 महीने में अनुभव हो रहा था। चारों ओर बाबा ने अपने घर को लाइट हाउस बनाने के लिए अव्यक्त वतन बना दिया है। किसी भी प्रकार की हलचल नहीं, न कोई मोटर गाड़ी, न कोई आना जाना। चारों तरफ से जो भी भाई बहने सेवा पर यहाँ हैं, योग करो, भोजन करो, सफाई करो, अपना काम करो, बस। पहला टर्न कामानुसार आपको मिला और इसमें भी मुझे जो आज टॉपिक मिली, मैं समझता हूँ आप सबने इतने दिनों में बहुत अच्छी मनसा सेवा का अभ्यास किया होगा। बहुत समय से बाबा कहते रहे हैं, बच्चे एक समय आएगा जो ये वाचा सेवा के चांस खत्म हो जाएंगे, आपको मनसा सेवा ही करनी होगी। और दुनिया के अंदर जितना दुख, दर्द, भय बढ़ता जा रहा है, उतना आप सबको निर्भय स्थिति में रह करके सर्वात्माओं को सकास देनी होगी। आप इधर आए हैं और साथ साथ समाचार शायद आपके कानों में आया होगा, 2 दिन के अंदर 24 घंटे में प्रकृति के तत्व ने, बरसात ने, 1 दिन में ही 5,000 करोड़ से अधिक नुकसान कर दिया तेलंगाना हैदराबाद में। इतना जबरदस्त बाढ़ आई 24 घंटे के अंदर, कितने मकान ढह गए, कितनी गाड़ियां बह गई, कितने लोग बह गए, न बिजली है, न खाने के लिए है, जो लोग छतों पर हैं वो छतों पर बैठे हैं। आप सब ऐसे समय में क्या ऐसी आत्माओं के लिए बाबा कहता है बच्चे रहम आता है, दुखियों की आवाज सुनाई देती है। केवल तेलंगाना हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ही महाराष्ट्र बाढ़ की चपेट में है। और ये सीजन जबकि बरसात पूरी हो चुकी है, लेकिन समुद्री तूफान आया और उसके बाद ये सब हुआ है। बाबा अपने बच्चों को कहते ही हैं कि बच्चे अभी तो एक एक तत्व अपना खेल दिखा रहा है, लेकिन ऐसा समय आएगा जो ये पांचों तत्व तो एक साथ अपना वार करेंगे। परिवर्तन के लिए सब की आवश्यकता है और ये परमात्म प्लान है, इसलिए हलचल में तो आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाबा के रहम दिल बच्चे, बाबा कहते ही हैं आप मेरे दयालु कृपालु रहम दिल बच्चे हो, इन दुखियों पर कुछ रहम करो। आज हम सब एक घंटा विशेष इसके लिए योग करेंगे 7 से 8 बजे तक। बाबा ने हम सबको सकाश देने की बड़ी अच्छी विधियां मुरलियों में सुनाई हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा बच्चों को स्पेशल सकाश देते थे। साकार मुरली कुछ दिन पहले एक आई थी कि बच्चे एक की याद में इस शरीर का भी अंत हो जाए, एकांत, एक की याद में इसका अंत हो जाए, ये भूल जाए। और उस समय उसी दिन की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे गीत कविताएं आवाज में आने की क्या जरूरत है। आप सबको मालूम होगा 67 में मम्मा के अव्यक्त होने के 2 साल बाद हमारे यज्ञ के अनन्य रत्न, हम सबके अति लाडले अति स्नेही दादा विश्व किशोर, जो बाबा के लौकिक में भतीजे थे और बहुत बाबा के अंगरक्षक कहे, शुरू से लेकर के 1936 से ही बाबा के कदम पर कदम रख करके बाबा के हर कार्य को संभाला। विश्व किशोर दादा की कहानी जिसको मालूम है हाथ उठाओ, है कोई? 2-4 ही है बस। विश्व किशोर दादा बाबा के साथ बिजनेस में भी साथ थे और बाबा के लौकिक भाई के ही लड़के थे, और बाबा ने ही शायद उनकी शादी कराई थी उनकी युगल संतरी दादी, जो यज्ञ की बड़ी नंबर 1 संदेशी रही। बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी वो। और अव्यक्त होने के बाद बाबा उन्हीं के तन में पहले आए, उनके द्वारा ही सारे डायरेक्शन दिए। और शायद ये भी आपको पता हो, जब बाबा के रथ खड़े का श्रृंगार हो रहा था तो शिव बाबा ने संतरी दादी के तन में प्रवेश होकर के रथ श्रृंगार भी किया था, फूल चढ़ाए थे, मालाएं चढ़ाई थी शिव बाबा ने डायरेक्ट संदेशी के द्वारा। वो दादा विश्व किशोर और हमारी दादी संतरी बहुत बाबा के अन्य रत्न। और थोड़ी तकलीफ हुई, हर्निया की ही शायद तकलीफ थी। आसन की बात आई तो रमेश भाई के साथ बाबा ने उन्हें बॉम्बे भेज दिया। और जब बाबा से छुट्टी ली, बाबा ने सामने से फोटोग्राफर को बुला के कहा कि आज ऊंचे के साथ फोटो लेना है। 3 ही जने हैं शायद जो आप फोटो देखेंगे इतिहास में, एक रमेश भाई, एक दादा और एक बाबा, 3 ही जने हैं। दोपहर में वो विदाई ले रहे थे तो चंद्रहास दादा फोटोग्राफर थे, बाबा ने कहा बच्चे को बुलाओ फोटो लेना है। बाबा वैसे फोटो लेता नहीं था, लेने नहीं देते थे। तो लास्ट फोटो बाबा ने निकलवाया उस बच्चे के साथ। और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो 1-2 तो ठीक रहे, लेकिन एक दिन बहुत दर्द हुआ, तो बाबा ने पूरी रात उस बच्चे को सकास दिए जाग करके। यहाँ ही पांडव भवन बाबा के कमरे से ही बाबा ने कहा बच्चे को आज रात भर बाबा ने सकास दी। बच्चे को बहुत दर्द था, बाबा तक उसकी आवाज आ रही थी, इसलिए बाबा को भी नींद नहीं आई और बाबा रात भर उस बच्चे को सारे करके उस दर्द को खींच रहे थे। उसके बाद उसने शरीर छोड़ा तो सबको ये था कि काला बच्चा है, बाकी अंग संग रहा, बाबा कितनी साथ दिया, इनके बॉडी को इस शव को मैं मधुबन लेके जाऊं। तो बाबा ने कह दिया बच्चे मिट्टी को यहाँ क्यों लाओगे, वहीं पर जला दो, वहीं करो, लाने की जरूरत नहीं है। तो निर्मल शांता दादी, संतरी दादी वो संस्कार में थी वहां, जब उनको लेके आए तो बाबा ने कहा ये मुर्दे के फोटो नहीं बाबा देखता है, दो फोटो नहीं देखे बाबा ने। प्यार बाबा का था जो रात भर बाबा ने उस बच्चे को सकास दी। उसके बाद ये मुरलियां चली और बाबा ने अपने आप को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए 68 से गहरा पुरुषार्थ शुरू कर दिया। और वो पुरुषार्थ तो आप सब बाबा की मुरलियों से अनुभव करते होंगे, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे, बच्चे आवाज में आने की जरूरत नहीं है, इन भी आवाज में आके क्यों करते हो। सवेरे सवेरे दादियां बाबा जाती थी कमरे में गुड मॉर्निंग करने, बाबा ने कहा बच्ची इसकी जरूरत नहीं है, बाबा अभी बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन तैयार करता है, इसलिए क्यों आते हो आवाज में। तो सवेरे भी बाबा ने आवाज में आना बंद कराया और मुरली के गीत भी बंद करा दिए, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत योग योग अंतर्मुखी होकर बाबा ने तपस्या की और तपस्या ऐसी थी जो छोटे हाल अंदर एक घड़ी थी उसमें चिड़िया के चूं 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 करती थी। तो बाबा कहते थे बच्ची इस बच्ची को बंद कर दो, इसकी आवाज नहीं चाहिए। इतना बाबा ने अपने आप को उपराम किया, न्यारा किया और पूरे विश्व को सकास देने की सेवा की। उसे भी समय अनुसार बाबा यही कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे ये परिवर्तन इतना सहज नहीं होगा, ये परिवर्तन में बहुत बड़ा तांडव नृत्य सृष्टि है, कलियुग कांत कोई सहज नहीं है, लेकिन आप बच्चों को ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के सर्व आत्माओं को सकास देनी है, लेकिन आपकी ऐसी ऊंची स्टेज बननी चाहिए पहले। वैसे भी कोई भी दूर तक फैलानी होती है तो उस लाइट को ऊंचे स्थान पर रखते हैं। शहरों में जहां पर भी हम विदेश में भी गए मैंने देखा कि हर जगह पर टावर बने हुए हैं, सब शहरों में सबसे ऊंचा एक टावर जरूर होता। अमेरिका के अंदर तो 120 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर टावर बना है, मुझे भी 80 मंजिल तक वो ले गए थे कि 80 से देखो पूरा शहर और यहां से सबको लाइट दो। चारों ओर जहां भी आप जाएंगे कहीं न कहीं शहर के अंदर एक बहुत ऊंचा टावर होगा, जैसे के अंदर बहुत बड़ा टावर है। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया तो दिन में अलग मुझे ले गए, रात को अलग ले गए, क्यों भाई दिखा रहे हो, कहते आप यहां से सारे ऑस्ट्रेलिया को सकास दो। ये तो स्थूल की बात है कहां तक हमारी सकास ऊंचे चोटी से जाती है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे परमधाम की ऊंची स्टेज पर आ जाओ। शायद आप सबको मुरली याद हो, जब 2000 में भूकंप आया कच्छ के अंदर गुजरात में तो 3-4 दिन के बाद बाबा का यहाँ अवतरण, और बाबा मुरली चलाते चलाते एकदम चुप हो गए, शांत हुए और कहने लगे बच्चे बहुत दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, आप सब एक सेकेंड में परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ और ऊंची स्टेज से इन आत्माओं को सकास्त हो। और बाबा ने खुद ड्रिल कराई। उस दिन मुझे याद है कि बाबा, क्योंकि मैं तो साथ साथ टाइप करता हूँ, बाबा एकदम स्टॉप करके पूरी सभा को और कहा कि बच्चे चलो परमधाम की ऊंची स्टेज पर और ऊपर से इन आत्माओं को शक्ति दो, सकास दो, शांति दो। तो कई बार बाबा ने साकार में या व्यक्त में ये अभ्यास हम सबसे कराया है प्रैक्टिकल। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, इस देह भान से, इस देह की मिट्टी से न्यारे होकर के अपने आप को एक लाइट माइट संपन्न आत्मा अनुभव करते हैं, उतना ही हम ऊंची स्टेज पर, ऊंची चोटी की स्टेज पर स्थित होकर वहां से पूरे ग्लोब को लाइट दे सकते हैं। मनसा सेवा के कई रूप हैं, कई प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर अनेक प्रकार से इस पर मुरलियां चलाई हैं, बहुत सारा होमवर्क दिया है मनसा सेवा का। और 2015 में हम लोगों ने पूरे ही देश विदेश के सेंटर्स पर एक तपस्या वर्ष मनाया था और मुझे कहा गया था कि सबको पूरे साल का होमवर्क भेजो। वो तपस्वी स्वरूप की एक मुरली, एक किताब बनाई थी छोटी, जिसमें टोटल जितनी योग की पॉइंट्स हैं, चाहे वो शरीरी स्टेज है, विदेही स्टेज है, आत्मभिमानी स्टेज है, मनसा सेवा, सकास देने की सेवा, अलग अलग 15-15 दिन का होमवर्क दिया गया था। 12 मास के 24 टॉपिक थे और 24 टॉपिक में 15-15, 16-16 पॉइंट्स थे। बहुत अच्छी लहर चली थी। अभी वो समय ऐसे लगता है कि वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है और इसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि जो साक्षात्कार की लहर शुरू हो, उस साक्षात्कार कराने के लिए हम सबको साक्षात मूरत बनना होगा। और वो साक्षात्कार मूरत तभी हम बन सकते हैं जब हमारे सब बाह्य संकल्प एकाग्र हो जाएं। जो भी हम इधर उधर के संकल्प चला रहे हैं, उन संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाए। आत्मा जो है जैसी है और बाबा जो है जैसा है। शायद आप सभी अभ्यास करते होंगे, योग करते करते ऐसे लगता है मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ। एक लाइट, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी, और उस स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो ये देह भान, देह की आकर्षण समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा बाबा का एक अनुभव, जब बाबा अव्यक्त हुए 3-4 दिन के बाद, बाबा ने, शिव बाबा ने कहा जाओ बच्चों को अपने शरीर छोड़ने का अनुभव सुना के आओ। मुरली है किताब के अंदर। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव सुनाए हैं उसमें कि जब कर्म भोग की बहुत एक तरफ हलचल थी, सुबह से ही लेकर के बाबा को तकलीफ तो थी शरीर की, खांसी भी बहुत थी, ठंडी भी बहुत थी, और एज तो 93-94 थी ही बाबा की। तो जब बाबा मुरली चला करके आए हैं, बिहली में आए हैं, तो बाबा ने वो अनुभव सुनाया है कि उस समय की मेरी स्थिति क्या थी। एक तरफ शरीर का कर्म भोग चल रहा था, दूसरी तरफ कर्मयोगी स्टेज से कर्मातीत स्थिति का अनुभव था। और जब आत्मा इस शरीर से निकली तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे अंगूठे से लेकर के सब शक्तियां समेटते ऊपर की ओर खिंचती आई, और जब ब्रकुटी में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गई तो ऐसे आंखों से निकल गई। ये बाबा ने अनुभव सुनाया है। तो हम सबको भी अभ्यास करना चाहिए। आप जब स्तर पर जाते हैं, ऐसे शरीर को छोड़ो, लेटा दो ऐसे, और आत्मा एकदम नीचे से जैसे ऊपर ऊपर आते आते एकदम प्रकृति के अंदर आई, और शरीरी स्टेज में स्थित हुई और इस शरीर के भान को छोड़ दिया, लीला हो गया। आत्मा ऐसे शरीर छोड़ के तो जा नहीं सकती कहीं कहीं, जब तक उसका समय नहीं आता। लेकिन अभ्यास करते करते कर्म इंद्रियों की जो आकर्षण है, जो दुख दर्द की या बीमारियों की भोगना की महसूसता है, हम कुछ समय के लिए उसको भुला सकते हैं। बाबा कहता ना, जैसे डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे करके दर्द को भुला देते हैं, दर्द वाले को सुला देते हैं, ऐसे ही आप बच्चे अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो, और ये इंजेक्शन ऐसा लग जाए जो इस शरीर भूल जाए, फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर के नेचुरल आत्मा के जो सात गुण हैं, वो सातों गुण जागृत होते हैं, वो अपने आप सेवा शुरू करते हैं। वर्तमान समय अगर हम ये स्मृति में रखते हैं कि इस समय बहुत दुख है, अशांति है, और मुझे सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति के सागर में एकदम स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के, और शांति की किरणें, शांति की सकाश मुझ आत्मा पर आई और वो चारों तरफ किरणें फैल रही हैं। वैसे तो आप देखेंगे सूर्य है, निकलता है तो उसकी ऑटोमेटिक चारों तरफ किरणें फैलती ही हैं, लेकिन वो एनर्जी का रूप कब बनती है? जब वो किसी कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं। आज सोलार एनर्जी है हमारे पास, कई जगह पर ऐसे साधन हैं जो सोलार सूर्य की या हवा की एनर्जी को इकट्ठा करके उससे बहुत सारे साधन उनके प्रयोग कर रहे हैं। सूर्य की किरणें अगर कांच के ऊपर किसी पर आती और स्वच्छ कांच पर आती हैं तो रिफ्लेक्ट कई गुना होकर के दूसरी तरफ जाती हैं। ऐसे ही बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें, चाहे शांति के सागर के, चाहे शक्ति के सागर की किरणें, ऐसे ऊपर से जैसे मेरे ऊपर आई और मैं आत्मा इतनी एकाग्र चित्त हूं, इतनी शांत चित्त हूं, जो वो किरणें यहां आती ही चारों तरफ रिफ्लेक्ट होके फैलने लगी। अब इसमें हमें कोई हदें नहीं बनानी है। कई बार मनसा सेवा के लिए लोग कोई कोई हद रख करके, हम यहां पर सेवा कर रहे हैं, हम इस देश में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वो स्मृति एक बार जरूर आती है। जैसे मैंने कहा कि बाबा ने कहा बच्चे कच्छ की तरफ बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है लोग, सकाश दो। अभी कहा तेलंगाना की तरफ बहुत हलचल है, बहुत ज्यादा परेशानी है, आप सकाश दो। तो स्थान एक बार याद तो आ गया, स्मृति में आ गया, लेकिन जब हम सकाश दे रहे हैं तो उस स्थान को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे अगर आपका कोई संबंधी बीमार है और उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर के आगे उसको हवाले कर दिया, डॉक्टर कहता है साइन करके दे दो भाई, कुछ भी होगा तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, आप उसको मुझे साइन करके दे दो और फिर आप भगवान को याद करो, फिर मेरा काम मैं करूंगा। ऐसे ही हम सभी भी इन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते, बाबा के आगे रख देते, बाबा इनको शक्ति दो, इनको मदद करो, इनको सकाश दो, और हम बाबा की याद में एकाग्रचित होकर के लगन में मगन हो जाते हैं। वो सेवाएं अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी है। जब बाबा की शक्तियों को हम अपने ऊपर एकाग्र कर लेंगे तो वो एकाग्र की हुई शक्तियां अपने आप वायुमंडल में ऐसे फैल जाएंगी। कई दूर दूर तक कईयों को अनुभव होता है, कहीं से शांति, कहीं से शक्ति आ रही है, कोई है मेरे रक्षक हैं, मुझे सकाश दे रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं। तो ये एक प्रयोग बार बार करना चाहिए और उसके लिए मन और बुद्धि की बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। जब एकदम अपने स्वस्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं, तो उस ज्ञान सूर्य बाबा की वो जो किरणें हैं, उस ज्ञान सूर्य बाबा की वो किरणें जब आत्मा पर स्थिर होती हैं, एकाग्र होती हैं, तो वो एकाग्र हुई शक्तियां अपने आप चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं और जहां पर जिसको जरूरत है, जो कैच कर सकता है, उसको अनुभव भी होते हैं। मनसा सेवा के लिए जैसे एक प्रयोग बाबा हम सबको सुनाते हैं, सिखाते हैं, बच्चे पूरे वृक्ष को तने से शक्ति मिलती है, बीज और उसके साथ तना है, तने के द्वारा पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है, सकास मिलती, सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही आप बच्चे इस कल्प वृक्ष की तने में बीज के साथ तपस्या में बैठी हुई आत्माएं हो। मैं कई बार ये अभ्यास करता हूं, दूसरों को भी कराता हूं, कि जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में एक तरफ ब्रह्मा बाबा कपल मुनि और कामधेनु मां और साथ में कुछ बच्चों को बिठाया है तने में और पूरा वृक्ष ऊपर है, सनातन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसके बाद शाखाएं उपशाखाएं टाल टालियां, वृक्ष पूरा देखो, इमर्ज करो और सारे वृक्ष की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे ब्रह्मा बाबा और हम सब उनकी वंशावली। जब इस पूर्वजपन के सम्मान में हम स्थित होते हैं कि पूरे वृक्ष के पूर्वज हम सब आत्माएं हैं, बाबा ने हम सबको तने में अपने साथ बिठाया है, हम तपस्या के अंदर बैठी हुई आत्माएं, तपस्वी मूरत, हमारी जो शक्तियां हैं शांति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, जितना हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं उतना ये चारों तरफ वायुमंडल में फैलने लगती है और पूरे वृक्ष को जहां जिसको जो जरूरत है वो अपने आप मिलती है, मिलेगी, क्योंकि हम तने में बैठे हुए हैं, आत्माएं उस समान में स्थित है, हम पूर्वज हैं, हम पूज्य हैं और बाबा ने अपने साथ हमें तपस्या का ये आसन दिया है। वैसे भी भक्ति मार्ग के अंदर वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं, अपने गया में, बौद्ध में, जहां पर भी देखा होगा सारनाथ में, तो वहां पर भी जो सिद्धियां प्राप्त की, गौतम बुद्ध को जो सिद्धियां मिली हैं, वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। हम सब इस कल्प वृक्ष के तने में बैठी आत्माएं, सिद्धि स्वरूप आत्माएं, पूर्वज आत्माएं पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहे हैं। जितना ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के हम तपस्या करते हैं और जितना हमारी मन बुद्धि स्थिर है, एकाग्र चित्त है, कोई हलचल नहीं है, हम कुछ दे रहे हैं ये भी भान नहीं है, लेकिन एक नेचुरल जैसे सूर्य की लाइट अपने आप चारों तरफ फैलती है, सूर्य कहीं देने के लिए नहीं जा रहा है, निकलता है, लाइट आती है, अंधेरा दूर हो जाता है, किरणें जब उसकी तेज होने लगती हैं, तो जहां कीचड़ है, गंदगी है, वो साफ होने लगती है, सूखने लगती है, और अगर सागर के ऊपर तेज किरणें पड़ने लगती हैं, तो उसका खारापन समाप्त होकर के वो पानी उड़ता है, भाप बनता है और हम सबको मीठे पानी के रूप में मिलता है। सूर्य की किरणें इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, ये प्रकृति की इतनी बड़ी शक्ति है जो इस मानव सृष्टि को चला रही है। हम सब आत्माएं प्रकृति जीत, प्रकृति पति, परमात्मा के बच्चे, अगर उस समान में स्थित होकर के बैठते हैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति सकास देने का काम करती है। तो कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके इस अनुभव में बैठो कि मैं एक पूर्वज आत्मा हूं, मैं आदि पिता ब्रह्मा बाबा कामधेनु मां जगत अम्बा के साथ बैठा हुआ तपस्वी आत्मा इस पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहा हूं, लाइट जा रही है अपने समान में स्थित होकर के एकाग्र चित्त होकर के अगर आप 15-20 मिनट भी बैठ जाएंगे तो वो जो प्रकंपन है वो अपने आप, और संगठन में अगर बैठेंगे तो बहुत फास्ट गति से फैलते हैं। एक दिन का मैं आपको अनुभव सुनाता हूं, शायद किसी क्लास में आपने सुना होगा। पांडव भवन के अंदर उस समय शांतिवन बना ही था नया नया, लेकिन पांडव भवन में 6 बजे से 8 बजे तक कोई कारोबार नहीं है, सब साइलेंस, चारों तरफ से योग चलता है, चाहे वो शांति स्तंभ पर, छोटे हाल में, बाबा के कमरे में, कुटिया में, बाहर जो आंगन में बैठे हैं, कोई हलचल नहीं, सब शांत। तो एक दिन मेरे पास एक ग्रुप आया था पांडव भवन में ऑफिस के अंदर, तो मैंने कहा चलो, ये लोग कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, अभी इसी समय मुझे आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। टीचर सी थी, 15-20 टीचर थी, और हमने ऐसे ही बाहर दरी बिछा दिया, बिठा दिया सबको, ऐसे ही दूह रिहान हो रही थी। 15-20 मिनट के बाद एकदम सब चुप हो गए, एकदम साइलेंस, हलचल ही बंद हो गई, न मैं बोलूं ना वो बोले, और ऐसे लगे जैसे बाबा कहता ना, कोई संत, कोई महात्मा, कोई बड़ा, कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के साथ वायुमंडल में सन्नाटा हो जाता है, सा सा बा बा की आवाज आती है। तो उस समय ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई ऐसे सकास आ रही है, लाइट आ रही है, और सब चुप। 5-7 मिनट तक हम लोग ऐसे ही बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोला किसी से। फिर मैंने पूछा है क्या हो गया अचानक ऐसा साइलेंस का, तो सबने यही अनुभव किया कि जैसे चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है और वो सारी शक्तियां ऐसे वायुमंडल में फैल रही हैं, इसलिए बोलने की आवाज में आने की दिल ही नहीं की, सब साइलेंस हो गए। अगर इतने पवित्र योगी 100-200 भाई बहन एक साथ बैठ करके ऐसे योग करें और सब एकाग्रचित हो जाएं एक ही संकल्प में, जो बाबा कहता है ना, एक संकल्प में अगर स्थित हो जाओ ना, अगर ब्राह्मणों का संगठन इतना एकाग्र हो जाए तो विनाश ज्वाला भड़क जाएगी, कलयुग सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। ये अभ्यास, मैं समझता हूं अमृत वेले भी ज्यादा, ये जो शाम का समय है, नुमाज शाम का, सब फ्रेश होकर के, सब कारोबार से हल्के होकर के, स्वच्छ साफ नहा धो के बैठ जाते हैं आके, इतना अच्छा एकाग्रता का अनुभव होता है जैसे फरिश्ते उड़ रहे हैं। और वो फरिश्ते रूप से जो सेवा करने का चांस है वो हम सबको इस समय करना चाहिए। हमारी दादियों ने, गुलजार दादी ने, जानकी दादी जी ने पक्का नियम बना लिया कि 7 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं करना, सब जगह योग। बॉम्बे में दादी से मिलने के लिए कई बार गए, अगर शाम के समय होते थे दादी आके ऐसे बैठा दे, बैठ जाती थी, योग करो सब, 7 से 7:30 कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। जानकी दादी भी 7 बजे एकदम कहती थी सब योग में बैठो, 7 से 7:30 कोई कारोबार नहीं करनी। ये समय ऐसा है जो हम बहुत अच्छी मनसा सेवा कर सकते, स्वयं में शक्ति भरने का समय अमृत वेले अच्छा है, बाबा से रू रियान करो, बहुत अच्छी तरह से शक्ति लो, सकास लो, बच्चा बन करके बाबा से सब वरदान ले लो, भोलेनाथ बाबा को रिझा दो, वो सवेरे के लिए ठीक है। लेकिन मनसा सेवा का ये जो समय है, 7 से 8 करो, 6:30 से 7:30 करो, 1 घंटा तपस्वी होकर, इतने मन और बुद्धि की स्थिरता हो, एकता हो, जो मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के बाबा जो है जैसा ऊपर की वो लाइट माइट का अनुभव करें और उसमें एकाग्र होके, जो बाबा कहता है जैसे आत्मा परमात्मा में समा गई, समाती नहीं है लेकिन लव लीन, प्यार में खो जाती है, कोई हलचल के संकल्प, इतनी स्थिरता है, इतनी एकाग्रता है, इतना एकदम शांति के, शक्ति के अनुभव है, उस अनुभव में खो गए। शून्य तो नहीं होना है, जड़ नहीं बनना है, कई लोग फिर योग करते करते शून्य में चले जाते हैं, संकल्पों को शांत करके ऐसे बैठ जाते हैं तो फिर कभी तो ऐसे सो जाते हैं उसमें। हम सबको बहुत जागृत अवस्था में अपने संकल्पों की स्पीड को रोकना है, जो इधर उधर भटक रहे हैं जा रहे हैं उनको कंट्रोल करके शुद्ध संकल्प, एक मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर स्थिर एक चमकता हुआ सितारा हूँ, इस प्रकाशमय स्वरूप में स्थित होकर इस देह से हम अलग होने का अनुभव करें। हैं शरीर में लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये अलग है, मैं अलग हूँ। वो जो लाइट है, वो जो शक्ति है, वो बाबा की किरणों को अपने आप खींच लेगी और फिर यहां से जो लाइट फैलेगी वो मनसा सेवा कहलाती। तो एक है कल्प वृक्ष के तने में बैठ करके हम ऐसी तपस्या करें, दूसरा फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के चारों तरफ से जैसे फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं और जहां पर आत्माएं पुकार रही हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं को ऊपर से सकाश दे रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा है लाइट के शरीर के द्वारा सेवा, और लाइट के शरीर का निर्माण हमें खुद ही करना है। बाबा हमें कोई लाइट का शरीर नहीं देता है, हम सबको खुद बनाना है अपना शरीर, और हर एक आत्मा के साथ वो लाइट का शरीर रहता ही है। हो सकता है किसी के लाइट के शरीर पर कोई कोई धब्बे हों, दाग हों, क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं तो वो दाग पड़ जाते हैं, और बहुत अच्छे शुद्ध पवित्र संकल्प खुशी के, प्यार के, आनंद के संकल्प है। हर आत्मा के प्रति बड़ी रहम भावना है, दया भावना है, शुभ भावना है, तो वो शुभ भावना के संकल्प चारों तरफ फैलते हैं, वो लाइट बन जाता, फरिश्ता ड्रेस बन जाती। जैसे कहते हैं ना, एक काली छाया एक सफेद छाया, कई आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उनके साथ काली छाया होती है, फिर वो डराती है, कहीं ना कहीं भटकाती है, भटकती है तो दूसरों को अनुभव होता है, मुझे दिखाई दिया, मुझे लगा कोई आया था, भयभीत हो जाते हैं लोग। और कोई हैं फरिश्ते रूप में जो बड़े अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले हैं, सुख देने वाले हैं, फरिश्ते रूप में, परी के रूप में भी दिखाई देते हैं। हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे जीते जी प्रैक्टिस करो, शरीर छोड़ने की बात छोड़ दो, कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हूं, मेरे बड़े शुद्ध पवित्र संकल्पों से एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल क्रिएट हुआ। पवित्रता का ये आभा मंडल चारों तरफ से इस शरीर के अनुभव को, आप लोगों ने शायद कैड के क्लासेज अटेंड किया होगा, हमारा जो ये कैड ग्रुप चलता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, उसमें एक बड़ा अच्छा सिद्धांतिक एक वैज्ञानिक प्रूफ इन्होंने दिया है डॉक्टर्स ने, कि कोई भी शरीर में जो बीमारी आती है वो पहला अटैक करती है हमारे लाइट के ऊपर के सूक्ष्म शरीर पर, पहले वो डैमेज करती है फिर इसमें प्रवेश होती है, और वो डैमेज होता है हमारे नेगेटिव चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से, अशुद्ध चिंतन से। जितना हम इधर उधर के व्यर्थ बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं, उन पर गहराई में चले जाते हैं, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, समाचार तो सब आजकल साइंस ने इतना फास्ट कर दिया है, जो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ की बात मुझे नहीं पता है लेकिन सेंटर्स वालों को पता है, वहां से मुझे समाचार आ रहा है, इतनी फास्ट न्यूज फैलती है। उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं लोग, देखते हैं उसको, इधर से देखा, अरे ऐसा हुआ, फट से फॉरवर्ड कर देते दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और वायुमंडल में नेगेटिविटी फटाफट फैल जाती। हम सब बाबा के बच्चों को इस समय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, ये तो एक कोरोना वायरस आया है, वायरस लेकिन पता नहीं आगे क्या आएगा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं दिखाई बताई आपको, अब हम सबको इन व्यर्थ से मुक्त होकर एकदम बड़े शुद्ध पवित्र संकल्पों के आभा मंडल में रहने की जरूरत है। और शुद्ध संकल्पों का खजाना केवल बाबा की मुरली में है। मैंने कई बार क्लासेज में कहा है, भाई आपके पास प्रिंटेड 48 साल का स्टॉक है, प्रिंटेड स्टॉक है अव्यक्त बाबा की मुरलियों का, 69 से लेकर के 2017 31 तारीख को बाबा ने लास्ट मुरली चला करके कह दिया समाप्ति वर्ष मना। 2017 तक की सब किताबें हमारी छपी हुई हैं, प्रिंटेड हैं। अगर हमारे पास टाइम है, समय मिलता है, नहीं भी मिलता है तो एक नियम बनाना चाहिए कि मुझे कम से कम एक मुरली रोज स्टडी करके अपने चिंतन धारा को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। एक विधि है और हर एक को अपनानी चाहिए, चाहे शाम के समय अकेले में पढ़ो, चाहे कोई ऐसी मुरली की बातें सुनो। मुरलियों पर हमारा जितना गहरा चिंतन चलेगा, हमारे संकल्प बड़े शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। और उस शुद्ध संकल्पों में अगर हम मनन चिंतन करेंगे, उस सागर की गहराई में जाएंगे, तो बहुत अच्छा मक्खन मिल जाएगा, बड़े अच्छे अच्छे चिंतन। मैं आज तक कभी भी क्लास कराने के लिए कोई किताब पढ़ करके नहीं आता हूँ, कोई कहानी पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं ये सुना दूं। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान का खजाना दिया है, ज्ञान रत्नों का ही पढ़ना है, वही भेजना है, वही चिंतन करना है। अभी मैं जनवरी की तैयारी कर रहा हूँ, जनवरी में क्या होमवर्क मुझे भेजना है, कौन से बाबा के कदम भेजने हैं सबको। तो ड्रामानुसार सेवा मिली है और वही चिंतन है, और उस चिंतन के कारण मुझे भले कई बातें हैं, यज्ञ की हैं, सेंटर्स की हैं, सब समाचार आते हैं, मुझे जवाब देना होता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरी बुद्धि पर वो नहीं आता। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान चिंतन दिया है, इतनी अच्छी खुराक दी है, हम उसमें रमण करें, मनन करें, चिंतन करें। और मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई है, जो भी ऐसा अच्छा चिंतन चलता है मैं अपनी डायरी में रोज लिखता हूं। हर एक बाबा के बच्चे को अगर अपने इस आभा मंडल को बड़ा शुद्ध और पवित्र बनाकर मनसा सेवा करनी है, तो किसी भी प्रकार की व्यर्थ और नेगेटिव बातें इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर चली गई हैं, मान लो कोई ने सुना दिया है, तो अंदर समाना नहीं है और दूसरों के आगे वर्णन नहीं करना है। गांठ बांध लो, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी के आगे इसका वर्णन नहीं करना। क्यों मैं व्यर्थ बातों की चर्चा को, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अगर मैं करूंगा, मेरी स्थिति अच्छी है, मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा, और सामने वाले की स्थिति अगर कमजोर है तो वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी। इसलिए हम सब अपने संकल्पों की गति पर ध्यान दें, और इनकी जितनी अच्छी क्वालिटी हमारी बन जाएगी, एक बहुत सुंदर फरिश्ते की रेस हमारी बनेगी, और उस फरिश्ते की रेस से हम सेवा कर सकते हैं ऊपर से। जैसे वतन से बाबा के पास गए, बाबा की लाइट से शक्तियां आई, कभी कभी अनुभव करते हैं जैसे बाबा के मस्तक से। एक बार मैंने गुलजार दादी से एक बड़ा रमणीक प्रश्न किया था, यही जब शांतिवन में थी, हमने, दादी आप बाबा के पास जाती हो और कहती हो कि बाप और दादा आपस में रूह रियान कर रहे थे, कैसे करते हैं रूह रियान, क्या डायलॉग करते हैं एक ही तन में, कभी बाबा बोलता है कभी दादा बोलता है? तो दादी कहती, नहीं नहीं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता है? तो दादी ने कहा कि शिव बाबा जब मुझे दिखाई देते हैं तो ब्रह्मा बाबा का जो संपूर्ण फरिश्ता रूप है, जो सबसे पहले जब बाबा वतन परमधाम घर से इस सृष्टि पर आते हैं तो सूक्ष्म वतन का निर्माण करते हैं, और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, तीन पुरियां, तीन कर्तव्य के आधार से हैं, तो बाबा अपने उस संपूर्ण स्वरूप में मुझे दिखाई देते हैं। ब्रह्मा बाबा का ही रूप है वो, लेकिन वो संपूर्णता का रूप है, और जब मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ तो बाबा जैसे साकार में थे ऐसा रूप मुझे दिखाई देता है। और फिर बाप दादा दोनों डायलॉग करते हैं, ब्रह्मा बाबा बच्चों का पक्ष लेता है, शिव बाबा शिक्षाएं देता है, डायलॉग का रूप ही है, हैं दोनों एक ही, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि बाबा के पास हम अव्यक्त वतन में जब जाएं या हम अनुभव करना चाहें तो हम भी साकारी वतन से जा रहे हैं, हमारी साकारी ड्रेस ही है, यही शरीर हमारे साथ है, लेकिन एक सूक्ष्म लाइट के शरीर में इसी रूप में हम ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को उस लाइट के रूप में देखें और उनके भ्रकुटी से निकलती हुई शक्तियां, वो किरणें या नयनों से निकलती हुई किरणें अनुभव करें और उस अनुभव को लेकर के फिर फरिश्ते ड्रेस से हम सेवा करें, पहले शक्ति भर लें फिर सबको दान करें। तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम सकाश देने की सेवा करते हैं, ऐसे ही फरिश्ते रूप से हम सारे ग्लोब को लाइट दे सकते हैं। और कभी एकदम निराकारी स्वरूप में बाबा के साथ, बाबा कहता है ऊपर उल्टा वृक्ष है, बीज ऊपर है, झाड़ नीचे उल्टा है, परमधाम के झाड़ को आप इमर्ज करो, बाबा के बिल्कुल समीप में आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप में शिव बाबा के बहुत निकट में बैठ गई, अपने लाइट माइट स्वरूप में वो शक्तियां मेरे अंदर आई और वो शक्तियां ऊपर से नीचे वृक्ष की ओर चली गई। परमधाम की जो ऊंची स्टेज है, जो टॉप की स्टेज है, उस टॉप की स्टेज में एकदम एकाग्र होकर के मन और बुद्धि को बाबा के साथ एकदम जोड़ दें और शिव बाबा की लाइट लेकर के ऐसे ग्लोब को दे दें, वृक्ष को दें। ये परमधाम की ऊंची स्टेज से मनसा सेवा है। एक और विधि बाबा कई बार सुनाते हैं कि आप सभी इष्ट देव इष्ट देवियां हो। कई बाबा की मुरलियां इस नवरात्रि जब शुरू होती है तो उसमें भी चली हैं। बच्चे आपको अपने भक्तों की आवाज सुनाई देती है, कल शायद पहला दिन है नवरात्रि का ना, कल सुनना सभी आवाज देवियां, सब अपने भक्तों की आवाज सुनना। इस समय तो बहुत पुकार है। उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा कहता है, हे देवियां, आपके पास भक्तों की लाइन लगी हुई है, आप इनको वरदान दो, इनको शक्ति दो, इनको सकाश दो। उस पूज्य स्वरूप में मैं इष्ट देवी हूं, मैं इष्ट देव हूं और मेरे हजारों भक्त मेरे को पुकार रहे हैं, आवाज सुनो और उन पर उपकार करो, बड़े स्नेह की शक्ति दो। ये सब निर्दोष आत्माएं हैं, विकारों के अधीन हो गई, भटक गई हैं, इन आत्माओं का कल्याण हो, ये मुक्त हो जाएं दुखों से, ऐसी बड़ी शुभ भावना लेकर के देवी स्वरूप में, देव स्वरूप में इष्ट देव इष्ट देवी बन करके बाबा की शक्तियों को दान करो। लेना तो एक से है, हमारे पास क्या है, हम क्या मनसा सेवा करें। जो कुछ बाबा से मुझे मिला है मेरे द्वारा चारों तरफ फैल जाए वायुमंडल में। नहीं तो कईयों को यह आता है, मैं सेवा करता हूं, मैंने इसकी मनसा सेवा की है तब इसके अंदर सुधार आया। कई बार कोई बीमार होता है ना, अभी ये कोरोना वायरस के कारण कई जगह पर बहने भी बीमार हैं, समाचार आते हैं, मिलते हैं, भाई जी योग कर दो, सकाश दो, सकाश दो। एक बहन 5 दिन वेंटिलेटर पर थी, मुझे रोज फोन आए दूसरी बहनों का, बहन भाई जी कुछ तो मधुबन में कुछ करो, ये ठीक हो गया वेंटिलेटर पर। रोज समाचार आए, आज अभी ये हालत है, एक दिन कहती बहुत क्रिटिकल हो गई, बहुत ज्यादा नाजुक, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, क्या करूं भाई जी, सब योग करो, सब योग करो, हम भी करते हैं। अब 2-3 दिन के बाद परसों से बाहर आ गई, कोमा से आई, उसको कुछ याद नहीं मुझे क्या हुआ। आते ही कहती है, मैं तो अभी तो आई हूं हॉस्पिटल में, फिर उसको जनरल वार्ड में रखा, फिर मेरे से बात कराई। ऐसी ऐसी आत्माएं, चाहे बाबा के बच्चे हैं चाहे दुनिया के लोग हैं, सबको इस समय शांति की, शक्ति की, सकाश की जरूरत है। सब चाहते हैं कि हमारे बड़े, हमारे मुखिया, हमारे लोग जो भी हैं, हमें कुछ समय शक्ति दे, सकाश दे। कई आत्माएं अपने संस्कारों के कारण परेशान हैं, संस्कारों को जीत नहीं पाती, युद्ध करती करते उनका जीवन जा रहा है। बच्चे बन गए, बाबा मिल गया, फिर भी युद्ध चल रही है संस्कारों से। कई पुराने हिसाब किताब उनके सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक परीक्षाएं आ रही हैं, कोई लौकिक बंधन आ रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चों को स्वतंत्र बन करके मनसा सेवा करने के लिए अगर जैसे डॉक्टर कभी दुखियों के दुख में अगर खुद दुखी हो जाए, हाँ इसको इतना दर्द है मैं इसको कैसे इंजेक्शन लगाऊं, इंजेक्शन से तो और दर्द हो जाएगा, तो दवाई नहीं दे सकता है वो। बिल्कुल उस समय अपनी शक्ति में अपने डॉक्टर स्वरूप में स्थित होकर के फिर इंजेक्शन देता है, फिर चीरफाड़ कर सकता है। अगर जरा भी उसको दर्द की महसूसता हो गई तो वो भी सेवा नहीं कर सकता है। तो बाबा भी कहता है दुखियों के दर्द में दुखी नहीं हो जाना, उनके हिसाब किताब में खुद परेशान नहीं हो जाओ, लेकिन आप बच्चे अलग से मास्टर बन करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की शक्तियां लो और इन आत्माओं को दो। ये आत्माएं एकदम इन दुखों से छूट जाएं, उस भोगना से मुक्त हो जाएं, इनके बंधन कट जाएं, बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से, बहुत एकाग्रचित वृत्ति से एकदम बाबा की लाइट आ रही है और इन आत्माओं तक जा रही है। ये तो अनुभव करना होगा, ये संकल्प रचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ऊंची स्टेज चाहिए। जरा भी क्यों क्या कैसे इसके साथ, कई तो सोचने लगते हैं तो इसके साथ होगा ही ऐसा, इसने ऐसा किया है, कर्मों का फल भोग रहा है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ये संकल्प आपको नहीं आने चाहिए, जानते हैं ज्ञान है। जैसे आज बाबा कह रहे थे अच्छे बच्चे इसने काला मुंह किया ना तो मर जाता तो अच्छा था, ऐसे बाबा बोल करके फिर कहता ड्रामा ड्रामा कह करके शांत हो जाता, ऐसे नहीं सोच सकते हैं। हम सभी भी अपने लौकिक परिवार के प्रति, लौकिक परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, इस विश्व के प्रति और खास करके इस प्रकृति के तत्वों के प्रति जवाबदार आत्माएं हैं। उस मास्टर के स्वरूप में सर्वशक्ति संपन्न स्थिति में स्थित होकर के बाबा की किरणों को ऐसे लुते जाओ और ऐसे देते जाओ। हर आत्मा अपना अपना हिसाब चुकतू करेगी, लेकिन वो दुख दर्द पीड़ा से मुक्त हो जाए, बाबा इसको जल्दी से इनसे छुटकारा दिला दे, ऐसी बहुत शुभ चिंतक वृत्ति चाहिए, शुभ भावना का स्टाफ चाहिए। इसलिए निर्दोष वृत्ति से, इन आत्माओं का कोई दोष नहीं है, इन विकारों के अधीन होकर के परवश होकर के इन्होंने गलतियां की हैं, उसकी भोगना आई है, इसे मुक्त हो जाए। ऐसी शुभ चिंतक वृत्ति मनसा सेवा में बहुत मदद करती है, और जितना शुभ चिंतन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों में रहते हैं, कोई अच्छा सामान ले लो, इतने अच्छे अच्छे सामान दिए हैं बाबा ने, मैं आपको निरंतर योगी बनने के लिए 5 सामान याद दिलाता हूं, 5 सिर्फ याद रखना। बहुत सहज ऐसे लगेगा बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं, कनेक्ट हैं। पहला एक सामान जो अमृत वेले आंख खुलते ही स्मृति में रहता है, बाबा मैं आपके मस्तक की मणि, इस मस्तक पर विराजमान मस्तक मणि हूं। मस्तक मणि समझते ही इस शरीर से न्यारेपन का अनुभव होने लगता है, शरीर का भान समाप्त हो जाता है। दूसरा सामान हम लेते हैं, मैं बाबा आपके नैनों का नूर हूं, मैं नूरे जहान हूं। बाबा कई बार कहता है 2-3 दिन से वरदान आ रहा है, नूर नहीं तो जहान नहीं, आप इस विश्व की रोशनी हो, आपके आधार से विश्व देख रही है समझ रही है, हम सब इस जहान के नूर, बाबा के नैनों के नूर, नूरे रतन हैं। बाबा के दिल तख्त के मालिक, जो बाबा कह रहे थे दिल तख्त पर मेरे कौन बैठ सकता है, आज की मुरली में था ना, दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है, मैं बाबा के दिल तख्त का सपूत बच्चा मालिक, उनके दिल में रहने वाली दिल रुबा दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाबा की इस बेहद सेवाओं में, विश्व परिवर्तन के महान कार्य में बाबा की राइट हैंड भुजा हूं, मुझे बाबा के कार्य में तन मन धन समय जो कुछ बाबा आपने दिया है वो सब सफल करके अपना भाग्य बनाना है, मैं आपका राइट हैंड हूं। चाहिए तो दोनों ही, लेफ्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए, लेकिन मैं आपका राइट हैंड हूं, जो श्रेष्ठ कार्य है मैं आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आगे हूं, और फिर मैं शिव शक्ति बाबा आपके साथ कंबाइंड हूं। ये अगर समान स्मृति में बार बार लाते, कर्मयोगी बनकर के भी याद रखते हैं, राइट हैंड बनकर के बाबा के कार्य में मदद करें, शिव शक्ति बनकर के बाबा के साथ का अनुभव करें। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, अब कंबाइंड स्वरूप किसको कहते हो, कैसे कंबाइंड हों? जब हम अपने लाइट स्वरूप में स्थित होते हैं तो बाबा की लाइट भी बहुत परम पवित्र लाइट है, वो उस लाइट को अपने साथ अनुभव करते हैं, और उसका संग का रंग, जैसे बाबा कहते हैं ना, पारस से अगर लोहा लग जाए, टच कर जाए तो पारस बन जाता है, ऐसे ही जब बाबा पवित्र पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, और जब मैं आत्मा उसके साथ टच करता हूँ, कंबाइंड हो जाता हूँ, तो हमें बिल्कुल वो प्योर वाइब्रेशन से शुद्धता का, पवित्रता का अनुभव होता है, बहुत निर्मल आत्मा बन जाती है। तो बाबा के साथ मैं कंबाइंड स्वरूप में हूँ। एक बाबा का एक वाक्य याद होगा, साकार बाबा ने एक दिन कहा मुरली में, बच्चे मुझे नशा है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, एक लाइट मेरी, एक शिव बाबा की, दो लाइट हैं, ये दो लाइट हैं, डबल लाइट आपके सामने हैं। तो मैंने एक दिन क्लास कराया, हमने कहा बाबा कहता है मैं डबल लाइट से तुम बच्चों को लाइट देता हूं, हमने कहा हम लोग तीन लाइट, त्रिमूर्ति लाइट बन जाए, एक मैं आत्मा लाइट हूं और एक तरफ बाबा, एक तरफ दादा, दोनों को बिठा दो और बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के योग करो। अब कई बार हम परम धाम में जाने की मेहनत करते हैं लेकिन परम धाम में पहुंच नहीं पाते, बार बार नीचे आ जाते हैं, तो क्या हम बाबा को इतना प्यार से कहें, बाबा ये दिल तख्त, ये दिल का तख्त, ये दिल नहीं, ये भ्रकुटी तख्त आपका आसन है, आप आ जाओ, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, इसके अंदर कोई व्यर्थ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी के लिए परचिंतन प्रदर्शन नहीं, आपके लिए बड़ा स्वच्छ स्थान है ये, आओ मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। बाबा अकेले नहीं जाएगा, दोनों साथ आएंगे, तो हम बाप दादा के बीच में बैठ करके मास्टर त्रिमूर्ति बन करके लाइट दें, ये अभ्यास तो कर सकते ना योग में, तो अभी हम सभी 8 बजे तक करेंगे मनसा सेवा करेंगे, ठीक है, सकाश दो सभी, कोई को उठना हो तो बीच में नहीं उठना, मेरे को लगता है अगर उठना हो तो 5 मिनट के लिए फ्रेश होके भले बैठो, 8 बजे तक बिल्कुल एक ही दस, 15-15 मिनट के बाद मैं आपको लक्ष्य दूंगा, जो हम लोग अपने ग्रुप में योग करते हैं वो कंटिन्यू कमेंट्री नहीं करते, कंटिन्यू गीत भी नहीं बजाते, 15 मिनट के बाद थोड़ा 2-4 लाइन गीत बजेगा, फिर हम लक्ष्य देंगे, फिर 15 मिनट योग करेंगे, फिर लक्ष्य देंगे, ऐसे करके 45 मिनट बहुत अच्छी तरह से तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर के योग अभ्यास करेंगे। ये समय नुमास शाम का बाबा ने हम सबको दिया है, जिनको बहुत जरूरी है 5-7 मिनट में फ्रेश होके बैठ जाएं। कोई खड़े होने हो जाए तो खड़ा होना चाहे हो जाए 2 मिनट के लिए, कोई हर्जा नहीं, फ्रेश होकर के बैठो, एकदम 45 मिनट हिलेंगे नहीं हम, ठीक है। गीत बजा दे,
विजय बहन आ जाओ, बैठ इधर आ जाओ, योग कराने के लिए दो बहने आ जाओ, और कोई दो आना चाहे तो इधर आ जाओ।
सभी अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो। भ्रकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, सर्वशक्तियों का पुंज, मैं लाइट और माइट से संपन्न एक चैतन्य बीज हूं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्वी मूरत होकर पूर्व स्वरूप से इस पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रहा हूं। बीज रूप बाबा के साथ मास्टर वृक्षपति बनकर इस पूरे वृक्ष को सर्च लाइट दो। अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर निर्माण करो। मैं आत्मा लाइट के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर इस सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से पार अव्यक्त लोक में अव्यक्त बाप दादा के सामने उनकी शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करो। बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। बाबा मुझे समान भाव का वरदान दे रहे हैं। मैं लाइट के चमकीले ड्रेस में लाइट की ऊंची पहाड़ी से इस पूरे ग्लोब को प्रकाश दे रहा हूं। अनेक आत्माओं की पुकार, उनके दुख दर्द की आवाज सुनते अपने रहम की दृष्टि से शुभ भावना की शक्ति से हर आत्मा को वरदान दो, शांति और शक्ति की सकाश दो। अभी हम सभी परमधाम घर का अपने निज स्वरूप का उस सर्वशक्तियों के सागर में समाने का अनुभव करेंगे। सभी अपने अपने ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप में स्थित होकर उस प्रकाश की दुनिया में जहां सदाशिव बाबा विराजमान हैं, जिसको अखंड मह तत्व परम धाम मूल वतन शांति धाम कहते हैं, चलो हम सब आत्माएं उस परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करें। जिसको भक्तों ने कहा है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वो लवलीन स्थिति क्या है, संकल्पों की भी हलचल समाप्त हो जाए। सागर के तले में जाओ, शीतलता का अनुभव करो, ज्ञान सूर्य की सकास लो, उस परम धाम की ऊंची चोटी से इस विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति का दान करो। चलो अपने उस निज धाम में उस सच्चे शिवालय में जहां आत्मा परमात्मा समान रूप में परम पवित्र रूप में विराजमान है, मैं आत्मा उस पवित्रता के सागर में शांति के सागर में समाई हुई हूँ।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो दुखाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। पाकर न पाक कुछ शेष जाए बाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए साथ अपने जग का जो रखवाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है
अभी हम सभी बहुत प्यार से बाबा को इस सभा में आवाहन करेंगे। सब अपने अपने दिल आसन पर बाप दादा को बहुत प्यार से निमंत्रण दे करके अपने साथ बिठाओ। भक्ति में कहते हैं हर गोपी के साथ भगवान है। आज हम अनुभव करेंगे हम सब के साथ वो कंबाइंड है, उसकी पवित्रता की शक्ति के वाइब्रेशन, उसके संग का रंग मुझ आत्मा को लग जाए। सभी अलर्ट होकर के बैठो, चुस्त होकर के, और बाबा का बहुत प्यार से आवाहन करो कि बाबा आप इस दिल आसन पर आकर बैठो। बहुत स्वच्छ आसन है, भ्रकुटी आसन पर पहले अपने स्वरूप में स्थित होकर बड़े स्नेह से भावना से बाबा से रूह रिहान करो और बाबा को इस आसन पर बुला लो। अनुभव करो बाप दादा के बीच में आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैं मास्टर त्रिमूर्ति बनकर सर्व आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ।
हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान तुम्हें तो दिल जिगर में हो तुम्हें हो नजरों में भगवान हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान
नजरों में भगवान हमारे दिल